क्या खाया था तूने? जरूर तू बाहर से कुछ खा के आई है। पुप्पो कब से डांटे जा रही थी। पुप्पो मैंने कुछ नहीं किया, वो ऊंजी मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेके गए थे, वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोली। वो जबरदस्ती अपने साथ लेके गया और तूने मजे से बाहर का खाना खाया। आरजू तो एहतियात क्यों नहीं करती है? बेटा तेरा 5वां महीना शुरू होने वाला है, तुझे एहतियात की जरूरत है और तू बहुत कमजोर है। इसीलिए कहती थी तेरा अकेले इस घर में रहना ठीक नहीं है, किसी बड़े की जरूरत है। लेकिन वो तेरा शोहर जब कोई बात माने तब ना। अभी वो इसे डांट ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ऊन को इसकी कॉल आई थी लेकिन मीटिंग के दौरान इसका फोन बंद होने की वजह से वो इसका फोन अटेंड नहीं कर पाया। अब फोन ऑन करते ही लातदाद मैसेजेस इसे रिसीव हुए। इसके इतने सारे मैसेजेस और फोन कॉल देकर ऊन परेशान हो गया, इसलिए इसने जल्दी से घर आने का फैसला किया। लेकिन घर आते ही यहाँ जुबैदा को देखा तो मजीद परेशान हो गया। वो भैया, आरजू बाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो तो खुदा का शुक्र है इनकी पुप्पो जी आ गई, वरना मैं तो बहुत घबरा गई थी, छोटी ने दरवाजा खोलते हुए कहा। ऊन परेशानी से अंदर आया। क्या हुआ आरजू, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था, तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हाँ फोन किया था, वो मेरा फोन बंद था, मैं मीटिंग में था। तुम ठीक हो ना? वो फिक्रमंदी से इसे बगैर बोलने का मौका दिए बोल रहा था। जी मैं ठीक हूँ, पुप्पो आ गई थी। वो कह रही थी जो कल रात हमने बाहर से खाना खाया हमें नहीं खाना चाहिए था। हाँ बेटा, आरजू को एहतियात की जरूरत है, इसके साथ हर रोज कोई ना कोई होना जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा मैं आरजू को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। जुबैदा अभी बोल ही रही थी कि उन्होंने अपना हाथ उठाकर इन्हें बोलने से बाज रखा। मैं अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं, वो सर्द नहरी से बोला। आप यहाँ तक आई, हमारे लिए तकलीफ उठाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ऊन कहकर ऊपर चला गया जबकि आरजू पुप्पो के सामने शर्मिंदा होकर रह गई। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, फोन करूंगी, अगर तबीयत मजीद खराब हुई तो बताना मुझे, पुप्पो ने उठते हुए कहा। इतने में ऊन यूनिफॉर्म चेंज करके नीचे आ चुका था। किसके साथ जाएंगी? आप आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, वो इन्हें कहता गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया, जबकि वो आरजू से मिलकर आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे कदम उठाती बाहर आ गई। आज उन्हें आरजू से मिले पूरा एक महीना गुजर चुका था। ना जाने क्या बात थी कि उस दिन के बाद आरजू ने फोन भी ना किया, शायद ऊन ने इसे बात करने से मना कर दिया होगा। जुबैदा बहुत परेशान थी, उन्हें हर वक्त आरजू की परेशानी लगी रहती, जो इतनी कम उम्र में माँ बनने जा रही थी और कोई बड़ा इसके साथ नहीं था। माना कि ऊन इसका बहुत ख्याल रखता था लेकिन ऐसे मामलात में ऊन भी कुछ नहीं समझता था। उन्होंने बहुत बार ऊन को फोन करने की कोशिश की लेकिन वो हमेशा ही इनकी कॉल्स को इग्नोर कर देता। कई बार इनका दिल चाहा कि वो आरजू से मिलने के लिए इनके घर चली जाए लेकिन फिर दिल पर पत्थर रख लेती। वो इनसे मिलना तो दूर, इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आरजू भी इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखे और वो आरजू से बार बार मिलकर इन दोनों में मजीद बदमजगी पैदा नहीं करना चाहती थी। इन्हें यकीन था कि ऊन ने ही आरजू को इनसे बात करने के लिए मना कर दिया है। एक महीना गुजर चुका था, इसने पुप्पो से बात नहीं की थी। उस दिन ऊन जब घर वापस आया तो सबसे पहले उसने एक बेहतरीन बड़ी उम्र की मुलाजमा का इंतजाम करवाया जो इसकी गैर मौजूदगी में आरजू का ख्याल रखे, और इसका इंतजाम होने के बाद ऊन ने आरजू को यही ऑर्डर दिया था कि आज के बाद वो पुप्पो को कभी फोन नहीं करेगी, इसे जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इनसे राबता करे, ना कि अपनी पुप्पो से। इन लोगों से दूर होकर अलग मकान में इसलिए रह रहा है ताकि इन लोगों का साया भी इनकी जिंदगी पर ना पड़े। ऊन ने इसे साफ लफ्जों में कह दिया था कि इन लोगों की अपनी जिंदगी में मुदाखलत इसे हरगिज गवारा नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आरजू भी अब से कोई ताल्लुक ना रखे। आरजू ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी बात से ना पलटा। इसकी वजह से इन दोनों में काफी लड़ाइयां भी हुई जिसके एंड पे आरजू हमेशा हिम्मत हार के बैठ जाती। वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करे लेकिन कभी भी इससे लड़ नहीं पाती थी। ऊन की ऊंची आवाज के सामने इसकी आवाज दब जाती, ना जाने क्यों इसे ऊन की ऊंची आवाज से डर लगता था। आरजू समझ गई थी कि वो ऊन से लड़ नहीं सकती लेकिन नाराज तो रह सकती है। वो 2 हफ्ते से इससे नाराज थी, वो रोज आकर इसे मनाने की कोशिश करता लेकिन आरजू ने ना मानने की कसम खा रखी थी। आजकल इसने एक ही रट लगाई थी कि इसे वापस इसी घर में जाकर रहना है। ऊन इसे मनाने की कोशिश करता और जब बात बस से बाहर हो जाती चिल्लाता, गुस्सा करता और फिर खुद भी नाराज होकर बैठ जाता। फिर दूसरे दिन एक नए सिरे से इसे मनाने की कोशिश करता। ऊन ने गुस्से में आकर इसका नंबर बदल दिया। वो जानता था कि आरजू को कोई नंबर याद नहीं है, जिसकी वजह से अब वो पुप्पो से बात नहीं कर पा रही थी। परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, आप बहुत कमजोर हैं। बाकी जिस तरह से आपके हस्बैंड आपका ख्याल रख रहे हैं, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं और आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेबी आ जाने के बाद इंशाल्लाह और भी ज्यादा करेंगे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सामने बैठी आरजू से कहा तो वो बेसहता शर्मा दी। फिर एक नज़र कमरे के बाहर देखा जहां ऊन इसका इंतजार कर रहा था। वो सुबह जबरदस्ती इसे साथ लाया था, वरना वो तो इसके साथ हॉस्पिटल आने में भी नखरे दिखा रही थी। ये बात अलग थी कि ऊन के सामने इसके नखरे कम ही चलते थे। वो उठकर बाहर इसके पास आई। हो गया चेकअप, अब घर चलें, आरजू ने मुंह बनाकर कहा। क्या कहा डॉक्टर ने, ऊन ने फिक्रमंदी से पूछा। क्या कहेगी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मैंने तो घर पर ही बोल दिया था, वो मुंह बनाती आगे चल दी। इसकी नाराजगी ऊन को बहुत भारी पड़ रही थी। कुछ तो बताया ही होगा डॉक्टर ने, ऊन इससे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बेबी भी हेल्थी है, और अब आप मुझे घर छोड़कर जाएं अपने काम पर, आरजू ने मुंह फेरते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। लेकिन आज तो मैं सारा दिन अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा, एक मजेदार सा लंच करते हैं फिर कहीं घूमने चलेंगे, ऊन ने ऑफर की। अब आरजू अपना मुंह सीधा रखे तो ठीक, वरना थोड़ी देर के बाद ऊन को भी गुस्सा आ जाना था। मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती ऊन जी, डॉक्टर ने मना किया है, और वैसे भी पुप्पो कहती हैं कि। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि इसने ऊन की तरफ देखा जो संजीदा नजरों से इसे देख रहा था। मतलब साफ था, इनका जिक्र करके इसने ऊन का मूड खराब कर दिया है। खाना खाना होता है आरजू, बाहर का हो या घर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डॉक्टर ने मना किया है तो ठीक है। मैं तुम्हें वापस घर ले चलता हूँ और आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा। ऊन ने आज अपने गुस्से को कंट्रोल करके इसे खुश करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आरजू कुछ ना बोल पाई। वो इसे लेकर घर आया और अपने कहे के ऐन मुताबिक इसके लिए इसकी पसंद का खाना बनाने लगा। आरजू जानती थी कि किचन का क्या हाल हो चुका होगा। बेचारी रिहाना आंटी और छोटी दोनों को इसने किचन से बाहर निकाल दिया था, जबकि रिहाना आंटी ये सोचकर सर पकड़कर बैठ चुकी थी कि किचन का क्या हाल हो गया है, और छोटी बैठकर अपने आने वाले काम को गिन रही थी। बाजी, भैया जी को मना करे ना, इतना गंद फैला दिया है हर तरफ, इसको समेटते समेटते 4 दिन लग जाएंगे। छोटी ने बेबसी से आकर इसकी मिन्नत की, जबकि वो जानती थी कि ऊन अगर कुछ ठान ले तो इसे करके ही दम लेगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंस्पेक्टर ऊन अच्छा खाना बना सकते हैं या नहीं, लेकिन खाना तो वो बना कर रहेंगे। फिर कुछ ही देर के बाद आरजू के सामने एक मजेदार सी डिश हाजिर थी। चलो आरजू खाओ, मैंने जिंदगी में पहली बार कुछ बनाया है, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। ऊन के स्पेशल ट्रीटमेंट से आरजू अपनी नाराजगी भूल गई थी। ऊन ने अपने हाथ से नवाला बनाकर इसके मुंह में डाला और अब वो एक्साइटेड सा होकर इसे देख रहा था। आखिर इसने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, जबकि आरजू हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि ये नवाला अंदर चला जाए, लेकिन आरजू ना इसे खा पा रही थी और ना ही निकाल पा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ऊन ने आखिर इस डिश में ऐसा क्या डाला है। आखिर आरजू अपने महाज में कामयाब हुई। बताओ ना कैसा बना है, ऊन ने पूछा, लहजे में एक्साइटमेंट बरकरार थी। बहुत अच्छा, आरजू ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। सच में, रुक क्यों गई, और खाओ ना, ऊन ने एक और नवाला बनाकर जबरदस्ती इसके मुंह में डाला। इससे पहले कि आरजू इसे निगलने की कोशिश करती, रिहाना आंटी हाथ में चीनी का डिब्बा लेकर आईं। सर जी, आपने नमक की जगह चीनी डाल दी है खाने में, रिहाना आंटी ने ऊन के सर पर धमाका करते हुए बताया। ऊन ने बेयकीनी से आरजू की तरफ देखा, जो बड़ी मुश्किल से ऊन का अपने मुंह में डाला हुआ नवाला चुबाने की कोशिश कर रही थी। ऊन हैरत से रिहाना को देख रहा था, जबकि वो शुक्रगुजार नजरों से इन्हें देख रही थी। और तुम्हें ये अच्छा लग रहा था, इस बार ऊन ने सख्त निगाहों से इसे घूरा। ये सब कुछ तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही थी, ऊन ने दुख से कहा। खुदा के लिए आरजू, जो चीज तुम्हें पसंद ना हो मुझे बताया करो, इस तरह से जिंदगी नहीं कटेगी, ऊन ने समझाना चाहा। अगर मैं कहती कि ये अच्छा नहीं है तो आपको बुरा लगता ना, वो मासूमियत से बोली। मुझे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आज के बाद तुम किसी बुरी चीज को अच्छा नहीं कहोगी। तुम इतने खराब खाने को किस तरह से खा रही थी, ऊन ने एक नजर अपनी बनाई हुई डिश की तरफ देखा। उठाओ ये सब और कुछ अच्छा सा बनाकर लाओ, इसने रिहाना को ऑर्डर दिया, जिसकी तकमील करते हुए वो फौरन बर्तन उठाकर ले गई। शाम के तकरीबन 7 बजे का वक्त था जब ऊन को फोन आया। ठीक है सर, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ, ऊन ने फोन रखते हुए कहा। ना जाने क्या बात हुई थी, लेकिन आरजू बस इतना ही सुन पाई थी कि वो इसे इस वक्त अकेला छोड़ के जा रहा है। ऊन जी, आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? रेहाना और छोटी के जाने के बाद वो अभी अभी दरवाजा बंद करके आई थी, जब मौसम के खतरनाक इरादे देखकर वो फौरन अपने कमरे में ऊन के पास आई। सुनो आरजू, तुम दरवाजा बंद कर लो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापिस आ जाऊंगा। ऊन यूनिफॉर्म पहने तैयार खड़ा था। नहीं ऊन जी, बाहर बारिश होने वाली है, आप इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। ऊन जी, मैं कैसे रहूंगी, प्लीज मत जाइए मुझे अकेला छोड़कर। देखिए, बाहर बारिश होने वाली है। आरजू इसके जाने का सुनकर रोने वाली हो गई। ओहो आरजू, क्या हो गया है तुम्हें? बस थोड़ी देर में वापिस आ जाऊंगा, और मुझे तो लग रहा है कि बारिश भी सिर्फ आंख मचोली खे रही है, आज नहीं होगी बारिश, और अगर हो भी गई तो जब तक ये शुरू होती है तब तक मैं वापिस आ जाऊंगा, ऊन ने इसे दिलासा देते हुए कहा। नहीं ऊन जी, आप नहीं जाएंगे, बस नहीं जाएं आप, मैंने कह दिया ना, आरजू जिद्दी अंदाज में बोली। आजकल वो बहुत जिद्दी होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे वक्त में इसका चिड़चिड़ापन नॉर्मल है। इसकी वजह से ऊन भी बड़ी खुशी से इसके नखरे उठा रहा था। मेरी जान, मैं थोड़ी देर में वापिस आ जाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इसे प्यार से समझाते हुए बोला। अगर ऐसी बात है ऊन जी, तो मुझे रास्ते में पुप्पो के घर छोड़ दें और वापसी पर मुझे अपने साथ ले आइएगा, आरजू ने हल पेश किए, जिस पर ऊन के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारे साथ मसला क्या है आरजू? तुम्हारे पास हर बात का एक ही हल है। जब मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ी देर में वापिस आ जाऊंगा, तो फिर इस फिजूल सी जिद का क्या मतलब है? मैंने कहा ना, मैं थोड़ी देर में वापिस आ जाऊंगा, आराम से दरवाजा बंद करो और फिर जाकर सो जाओ। मेरे पास डुप्लीकेट की है, मैं खुद ही दरवाजा खोलकर आ जाऊंगा, इस बार थोड़ा सख्ती से बोला तो आरजू कुछ भी ना बोल पाई। मुंह ठीक कर अपना यार, जल्दी आ जाऊंगा, वो जाने से पहले एक बार फिर से प्यार से समझाते हुए बोला, तो आरजू ने बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर दिया, जबकि मौसम के खतरनाक तेवर देखकर वो और ज्यादा डरने लगी थी। ऊन को गए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। वो जो पहले ही डर के बैठी थी कि बारिश की आवाज सुनकर बिल्कुल ही बिस्तर में घुस गई। या अल्लाह जी, बारिश बेशक होती रहे, कोई मसला नहीं है, बस बिजली नहीं कड़कनी चाहिए। वो दोनों हाथ जोड़े दुआएं मांग रही थी, जब अचानक तेज कड़कती बिजली की आवाज आई और इसके साथ ही आरजू की चीख बुलंद हुई। इसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और ऊन के नंबर पर फोन करने लगी, लेकिन फोन बजता रहा और ऊन ने नहीं उठाया। ऊन जी प्लीज फोन उठाइए, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। या अल्लाह जी, ऊन जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आरजू ने परेशानी से फिर से नंबर डायल करना शुरू किया, लेकिन बार बार फोन करने के बाद भी ऊन ने फोन ना उठाया। या अल्लाह जी, ऊन जी तो फोन ही नहीं उठा रहे, मैं क्या करूं? बहुत कोशिश के बाद वो हिम्मत करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी इसे नींद ना आई। बाहर हर थोड़ी देर के बाद कड़कती बिजली की आवाज आती थी और इसका नन्ना सा दिल कांप उठता। इसने डर कर एक बार फिर से ऊन को फोन मिलाना शुरू किया, लेकिन 5-6 बार फोन करने के बाद भी ऊन ने फोन ना उठाया। जब अचानक लाइट चली गई और लाइट जाते ही आरजू का डर मजीद बढ़ गया। अब आंसू रोकना मुश्किल था। रोते रोते इसने एक बार फिर से ऊन को फोन मिलाना चाहा, और हर बार की तरह ऊन ने इस बार भी फोन नहीं उठाया। अब तो फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली थी, और अगर ऐसा हुआ तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा, फिर इसका यहाँ रुकना नामुमकिन है। टॉर्च तो नीचे वाले कमरे में है, नीचे वाले कमरे में चली जाती हूँ, वहां बिजली कड़कने की भी आवाज कम आएगी। वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाए नीचे की तरफ आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती सीढ़ियों के पास आई। अभी इसने पहली सीढ़ी पर ही पैर रखा था जब इसका फोन अचानक बंद हो गया, और इसी वक्त बिजली कड़कने की वजह से आरजू डरकर पीछे वापस अपने कमरे में जाने लगी कि इसका पांव फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। दर्द की एक लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ी थी। इसने अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाई, और एक बार फिर से इस घर में आरजू की चीखों की आवाज गूंजी। लेकिन ये चीखें डर या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि इस दर्द की शिद्दत की वजह से थी जो इस वक्त आरजू बर्दाश्त कर रही थी। ऊन ने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया तो इसमें लातदाद आरजू के मैसेजेस थे, जिसे देखकर वो परेशान हो गया। यकीनन बारिश की वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई होगी, लेकिन अब बारिश काफी कम हो चुकी थी, शायद अब तक वो सो भी चुकी होगी, लेकिन ऊन के आने से पहले वो कभी नहीं सोती थी। उमर तू मेरे साथ चलेगा या अकेले जाएगा? उमर की गाड़ी पिछले कुछ दिनों से खराब थी, जिसकी वजह से ओन इसे पिक और ड्रॉप करने जाता था। यार छोड़ दे मुझे और आरजू भाभी के हाथ की चाय पिला दे, इस एएसपी ने तो आज दिमाग का दही करके रख दिया। भाभी के हाथ की चाय पी के रिलैक्स हो जाऊंगा, उमर ने कहा। वो तो ठीक है यार, लेकिन मुझे पहले घर जाना है, ऊन ने कहा। हाँ तो हम तेरे घर ही जा रहे हैं ना? उमर को कुछ समझ न आया। मैं इस घर की नहीं, वो पुराने वाले घर की बात कर रहा हूँ, ऊन ने समझाया तो उमर बेसाख्ता मुस्कुराया। तू आज भी इसी घर को अपना घर मानता है, पता है तुझे कुछ चीजें और कुछ रिश्ते कभी नहीं बदल सकते, चाहे हम इन्हें दिल से उतारने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारे दिल में अपना घर पहले से बनाए बैठे होते हैं। जिन रिश्तों से तू जान छुड़ाकर भागना चाह रहा है ऊन, वो तेरे दिल में जगह बना के बैठे हैं। इन रिश्तों से दामन बचाना इतना आसान नहीं, उमर ने आज फिर इसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की। बस बस तेरे लेक्चर की जरूरत नहीं है, मैं बस आखिरी बार इस घर में जा रहा हूँ, आज मैं ये किस्सा ही तमाम कर देने वाला हूँ, ऊन ने गुस्से से इसकी बात काटी। आरजू कब से फोन किए जा रही थी, लेकिन पिछले आधे घंटे से इसने कोई फोन नहीं किया, यकीनन नाराज हो गई होगी। वो मुस्कुराते हुए फोन जेब में डाल चुका था, इसका इरादा घर जाकर ही आरजू को मनाने का था। बाकी सब कुछ तो ठीक है ऊन, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? उमर ने पूछा। अभी तो बताया है तुझे, आज मैं इस घर से हर रिश्ता तोड़ने आया हूँ, ऊन बताता हुआ अंदर चला गया तो उमर भी इसके पीछे आया। अरे ऊन बेटा आओ ना, तुम वहां क्यों खड़े हो? जुबैदा तकरीबन भागते हुए इसके करीब आई, जब ऊन ने अपना हाथ उठाकर इन्हें कुछ भी बोलने से बाज रखा। मुझे कुछ जरूरी काम था, इसने तमाम घर वालों की तरफ एक नजर उठाकर देखा, जो थोड़ी देर पहले बैठे चाय से लुत्फअंदोज हो रहे थे। इनके घर में रात के वक्त चाय पी जाती थी। हम बैठ के बात करते हैं ऊन, जुबैदा इतने दिनों के बाद इसे देखकर बहुत खुश थी, जबकि आरजू से इनका राबता अब ना होने के बराबर था, क्योंकि इस दिन के बाद वो आरजू से अब तक ना मिल पाई थी और ना ही फोन पर कोई राबता था। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, ये पेपर देने आया हूँ। ये घर जो दादा ने मेरे नाम किया था, मैं वापस आपके शोहर आपके जेठ के नाम कर चुका हूँ। ये इन दोनों की जायदाद है, इन दोनों का हक बनता है इस पर। दादा ने गलत फैसला किया था ये सब कुछ मेरे नाम करके, और अब इसे मैं ठीक करने जा रहा हूँ। आज से मेरा इस घर से, इस घर के लोगों से और खास करके आपसे कोई ताल्लुक नहीं। ऊन बिना किसी लिहाज के और ये जाने बगैर कि इसके अल्फाज किसी के दिल पर खंजर की तरह चढ़ रहे हैं, बोला, मैं आपसे और आपके इस घर से अपना हर रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। अब आप लोग मेरी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, ना मुझसे आपका कोई रिश्ता है और ना ही मेरी बीवी और मेरे बच्चे से। बेहतर होगा अब आप हमारी जिंदगी में इंटरफेयर ना करें, मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो। यकीनन आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। वो फाइल को टेबल पर फेंकता हुआ वहां से बाहर निकल चुका था, जबकि इसकी माँ वहीं जमीन पर बैठ के दहाड़े मार मार के रोने लगी। आज इसने अपना आखिरी सहारा भी खो दिया। वो जो इसे यकीन था कि इसका बेटा लौट के आएगा, वो इसे माँ कहकर पुकारेगा, वो इसे माफ कर देगा, सब पर पानी फिर चुका था। इसकी हर उम्मीद टूट चुकी थी, सब ही उदास थे। समीर और हारिस भागकर इनके करीब आए और इन्हें शानों से थामकर अपने साथ लगाया। रोको उसे, वो चला जाएगा, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, खुदा के लिए रोको, कोई तो रोक लो इसे, जुबैदा के रोने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। उमर को बेसाख्ता इन पर तरस आया, लेकिन इनके पत्थर दिल बेटे का दिल ना पिघला। ऊन ये तूने ठीक नहीं किया, उमर ना रह सका तो बोल पड़ा। बिल्कुल ठीक किया है मैंने, और ज्यादा बातें मत कर, चल तुझे आरजू के हाथ की चाय पिलाता हूँ। ऊन इसकी बात को अहमियत दिए बगैर बोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उमर का मूड सारे रास्ते ऑफ रहा, वजह तो ऊन जानता था, इसलिए पूछना इसने जरूरी ना समझा। यार वो लोग मेरे घर वाले हैं, खुदा के लिए इस तरह से मुंह बनाकर मत बैठ, तूने उनके साथ ठीक नहीं किया, उमर ने गुस्से से कहा। वो औरत जिसके लायक है मैंने इसे वही दिया है। जुबान संभाल के बात कर ऊन, तू अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है, उमर गुस्से से बोला। हाँ जैसे तू तो अनजान है कि इस माँ ने मेरे साथ क्या क्या किया। अब ऊन को भी गुस्सा आने लगा। ऊन तू कभी अपनी गलतियों को नहीं देखता, हमेशा दूसरों की चीजों से गलती निकालने की कोशिश करता है। माना कि वो तुझे इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन फिर भी तू आया ना, वो तेरी माँ है, इस दुनिया में इनसे ज्यादा तुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, तू एक माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उमर अब भी इस पर गुस्सा कर रहा था। माँ, वो हंसा, ऐसी होती है माँ, ऊन ने सर झटका। माँ माँ होती है और वो ऐसी वैसी नहीं होती, लेकिन सच तो ये है कि माँ की कदर सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनकी माँ नहीं होती। उमर ने बेसाहता अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे। ऊन ने ना चाहते हुए भी इसे हर्ट किया था, तभी इसका घर आ गया। ऊन ने बाहर आकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज न आई। आरजू ऊपर वाले कमरे में है, शायद सो चुकी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आरजू सो गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं अपने यार के लिए चाय बनाऊंगा। ऊन ने इसका मुंह ठीक करने के लिए कहा और अपनी जेब से डुप्लीकेट की निकाली, लेकिन दरवाजा खोल के जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ऊन को लगा जैसे इसका पूरा वजूद बेजान होने लगा है। आरजू बेहोश जमीन पर पड़ी थी। वो दौड़ लगाकर इसके करीब आया, जबकि उमर अंदाजा लगा चुका था कि वो इन्हीं सीढ़ियों से गिरी है, क्योंकि आधी सीढ़ियों पर इसका मोबाइल पड़ा था। ऊन, लगता है भाभी सीढ़ियों से गिर गई हैं, तो जल्दी से उठाकर बाहर ला, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, उमर ने जल्दी से कहा और इसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की तरफ भागा। आरजू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं। ऊन को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो कैसे इस हालत में इसे अकेला छोड़ के जा सकता था, जबकि वो जानता है कि इसे बारिश से खौफ आता है। वो इसे उठाए बेचैनी से बाहर की तरफ भागा था। एक डर, एक खौफ, सब कुछ खो देने का। वो जो अपनी अलग दुनिया बसाने जा रहा था, अपनी अलग दुनिया बनाने जा रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था, वो भी इसकी नजरों के सामने। ना जाने आरजू कितनी देर से वहां नीचे पड़ी थी। इतनी सर्दी और बारिश में आरजू की ऐसी हालत, ना जाने कितनी देर से तकलीफ से तड़पती रही होगी वो। उमर ने गाड़ी फुल स्पीड से अस्पताल की तरफ बढ़ा दी और कुछ ही देर में वो लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। देखें, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हमें डिलीवरी अभी करनी होगी, आप दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, लेडी डॉक्टर इसे दलासा देती हुई अंदर जाने लगी, जबकि ऑपरेशन का नाम सुनकर वो परेशान हो गया। डॉक्टर, आपने तो नॉर्मल केस बताया था, ऊन ने परेशानी से कहा। जी हाँ, नॉर्मल केस होता अगर ये नॉर्मल डिलीवरी होती, ये सीढ़ियों से नीचे गिरी हैं। डॉक्टर वक्त जाया किए बगैर अंदर जा चुकी थी, जबकि ऊन की हालत से वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। उमर का दिल चाहा कि वो मिसबा को यहाँ बुला ले, लेकिन मिसबा भी यहाँ आकर क्या कर सकती थी। उमर अब खुद बहुत परेशान हो चुका था, जबकि ऊन का फोन इसके हाथ में था। इसने बिना ऊन के बारे में सोचे ऊन के घर पर फोन किया। इसका फोन देखते ही जुबैदा बेगम ने फोन उठा लिया। हेलो आंटी, प्लीज क्या आप इसी वक्त अस्पताल पहुंच सकती हैं? आरजू भाभी सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं और मुझे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज अगर आप यहाँ आ जाएं तो, उमर ने बहुत इल्तिजा लहजे में कहा। बेटा, कौन से अस्पताल में, आरजू ठीक तो है ना, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। वो जानता था बेशक वो कितना ही क्यों ना इनकार कर ले, इसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की ही जरूरत है। अपने कहे के मुताबिक जुबैदा और इसकी फैमिली कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच चुके थे। क्या हुआ आरजू को, ठीक तो है ना वो, उन्होंने उमर से पूछने की बजाय ऊन से पूछा था। शायद इन्हें इस वक्त इससे कोई शिकायत ना थी। वो अपना रोना धोना, दुख तकलीफ भूलकर अपने बेटे की तकलीफ में शामिल हो रही थी, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी ना बोल पाया। तू फिक्र मत कर ऊन बेटा, आरजू बिल्कुल ठीक होगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। अभी वो इसे हौसला दे ही रही थी कि डॉक्टर बाहर आई। ये थी दीदारे इश्कम की 10th एपिसोड। एपिसोड पसंद आने पर इसको ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको इजीली मिल सके।